नमस्कार।
नमस्कार।
आज हम संबंधों को सुमधुर बनाने की और कुछ सरल युक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। मानव की प्रशंसा की भूख भीम जैसी है, जितनी भी उसे प्रशंसा करो हर व्यक्ति को अच्छा लगता है। इसलिए संबंधों को अच्छा बनाना है तो हर मौका ढूंढो। हाँ, छोटी से छोटी बात में भी व्यक्ति की प्रशंसा करो। हाँ, उसका सारा दिन अच्छा जाएगा। एक बार एक बहुत ही सीनियर मैनेजर वीजा लेने के लिए पोलैंड की एम्बेसी में गया, तो जैसे ही वह वहां पर गया, जो ऑफिसर उसे मिलना चाहते थे और कोई बात करने के पहले ही कहा कि तुम्हारी टाई बहुत अच्छी है। हाँ, इंडियन टाई तो नहीं है, जरूर फॉरेन की होगी। तो वो मैनेजर ने खुद बताया कि वो सारा दिन यह बात मुझे याद रही। बोले उसने वीजा दिया नहीं, कोई भी उसका कारण ढूंढ करके कहा दोबारा लाना, ये पेपर्स ले आना दूसरी बार, परंतु ये जो शुरुआत ही प्रशंसा से की तो उसका सारा दिन अच्छा गया। तो छोटी सी प्रशंसा वो बहुत बड़ा सहयोग है। सोशल वर्कर जो हेल्प करते हैं उससे भी यह बहुत बड़ी हेल्प है। और जिन्यून हो, बल छोटी बात को बड़ी बनाओ, परंतु थोड़ी सी भी उसमें 10% भी सत्यता है तो व्यक्ति को जरूर अच्छी लगेगी। हम आजकल ना उल्टा करते हैं। मैं देखा है कहीं बार, एक बार एक क्लाइंट मेरे पास आया तो बात बात हम कर रहे थे, तो बात बात में खाने की बात निकली। पति पत्नी दोनों थे, तो उसने तुरंत बोला कि मेरी माँ है ना बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तुरंत सोचे कि पत्नी आपके बाजू में बैठी है और आप बोलते माँ अच्छा खाना बनाती थी, तो उस पर नेगेटिव इफेक्ट होने वाली है। भलो अच्छा बनाती थी, लेकिन अभी तो पत्नी के हाथ का ही खा रहे हो। इसलिए कभी आप देखना, पत्नी ने थोड़ा भी डिश थोड़ी अच्छी बनाई हो आप उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि तुमने आज ये डिश बहुत अच्छी बनाई है। दूसरे दिन ओबेरॉय होटल के कुक से भी अच्छा खाना आपको बना के देगी। परंतु क्योंकि हम कई चीजों को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड, कई छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान नहीं देते, और ध्यान नहीं देते इसीलिए गृहस्थ जीवन में भी प्रॉब्लम आता है। एक और बिजनेसमैन थे, शुरू में आप प्रशंसा करेंगे ना तो लोगों को आश्चर्य भी होगा, ये तो कभी भी नहीं करते, आज ही प्रशंसा कर, जरूर कोई स्वार्थ है। परंतु बार बार करते रहो तो देखो उसकी इफेक्ट होगी। और एक बिजनेसमैन को घर में बड़ा डिस्टरबेंस होता था, तो और जो मैंने राय दी उसके साथ यह भी उनको एक काउंसिलिंग में राय दी कि आप मौका ढूंढो, कि अपनी पत्नी की प्रशंसा करने का आप मौका ढूंढिए। तो थोड़े दिन में मौका मिल गया। एक बार उनकी पत्नी बीमार थी और उसने बहुत सेवा की, फिर और थोड़े दिन हुए तो खुद बीमार हुए, और खुद बीमार हुए तो उसकी पत्नी ने भी उनकी उससे भी ज्यादा सेवा की, उससे भी ज्यादा उनको हेल्प की। तो फिर उन्होंने देखा कि ये मौका ढूंढना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत प्रशंसा की कि देखो ऐसे ही तुम जितना हमारा यह समय अच्छी तरह से बीता, भले मैं बीमार था तुमने इतनी सेवा की, अगर ऐसे ही हमारा संबंध रहे तो हमारा घर तो स्वर्ग बन जाएगा। उसकी पत्नी ने कहा यह युक्ति बच्चों के साथ चलेगी, मेरे साथ नहीं चलेगी। क्यों ऐसा रिस्पॉन्स, क्योंकि अचानक हुआ। हमेशा तो उनसे लड़ते रहते थे, गलतियां निकालते थे, आज जरूर कोई स्वार्थ है, लेकिन अगर व्यक्ति बार बार करता रहे तो वह जरूर एक्सेप्ट करेंगे कि अब जिन्यून इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। इसलिए प्रशंसा करने का हर मौका ढूंढो, उसमें कंजूसी नहीं करो। और एक काम करना है, जब व्यक्ति सामने है तब तो प्रशंसा करो ही, परंतु सबसे बड़ी बात है आपको देखो, अगर रिजल्ट देखना है ह्यूमन रिलेशंस का, तो यह काम करके देखना कि उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में प्रशंसा करो। जब वो व्यक्ति वहां हाजिर नहीं है तब आप प्रशंसा, ये नहीं सोचो कि भी क्या उसको इसका ही मालूम पड़ेगा। हाँ, ये सर्कल कंप्लीट होना ही है, कोई ना कोई बात से जिसको आपने सुनाया वह और किसी को सुनाएगा, वह और दूसरे को सुनाएगा, ऐसे करते करते वह प्रशंसा जिस व्यक्ति का संबंध है वहां तक भी जरूर पहुंचेगी। बोल सकता है कि शब्द बदली हो गए होंगे, आपने जो सुना है उसे शब्द बदली हो गए, परंतु वह प्रशंसा ही रहेगी और उसमें आपका नाम भी जुटा हुआ है, क्योंकि आपका नाम भी इसमें जुटा हुआ है तो इसलिए वह व्यक्ति आपके प्रति बहुत अच्छा सोचने लगेगा और कई समय की समस्या खत्म हो सकती है। इसके लिए हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, कहते वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों एक ही समय में ऋषि हुए और विश्वामित्र को यह था कि मुझे ब्रह्मर्षि की उपाधि मिले, परंतु उनमें गुस्सा बहुत था, उनमें इतना गुस्सा था कि उनको ब्रह्मर्षि की उपाधि दे नहीं सकते हैं, और वशिष्ठ ही एक थे कि जो उनको यह टाइटल दे सकते हैं। तो मैं क्या किया, जो तो गुस्से वाले थे तो कहते कि उन्होंने वशिष्ठ के कई पुत्रों को भी मार डाला था, और एक दिन तो यहां तक कि विश्वामित्र छिपके से छिप गए और सोचा कि भी जब भी मौका मिले ना इसी को खत्म कर देता हूं, ये काटा ही मेरे मार्ग से निकल जाए। तो वशिष्ठ अपनी पत्नी के साथ चर्चा कर रहे थे, उनकी पत्नी ने पूछा कि ये जो सभी ऋषि है उसमें सबसे तेजस्वी ऋषि कौन है, ना सबसे अच्छा तपस्वी इन सभी ऋषियों में कौन है। तो वशिष्ठ ने तुरंत कहा कि और कौन, विश्वामित्र, विश्वामित्र सबसे बड़ा तपस्वी ऋषि है। और उन्होंने सुन लिया, छिपके से मारने के लिए वहां तो खड़े थे, तो जैसे सुन लिया तो बस उनमें जबरदस्त परिवर्तन आ गया, तुरंत ही बस आंखों से आंसू आ गए, अंदर आए और उनके पैर पकड़ लिए कि आप तो इतने महान हो, मुझे पता नहीं था, देखो मैं तो कितना गलत भाव लेके आपको मारने के लिए आया था। और जैसे ही उन्होंने यह बात कही तो वशिष्ठ ने उनको उठाया, उठो ब्रह्मर्षि उठो। तो है ना, एक कहानी के दो हिस्से हैं, एक तो है कि उनका अहंकार खत्म हो गया, पहले अहंकार था इसलिए ब्रह्मर्षि की उपाधि नहीं दे सकते थे, जब उन्हें प्रायश्चित हुआ और माफी मांग ली तो अहंकार खत्म हो गया तो इसलिए ये उपाधि मिल गई। और ये हुआ कैसे, क्योंकि इनके एब्सेंस में प्रशंसा की गई। तो आप भी हर मौका ढूंढो तो ऑटोमेटिक उसका आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकेगा। बोरीवली में जहां मैं रहता हूं वहां हमारे एक डॉक्टर है, डॉक्टर वसा, वो स्किन स्पेशलिस्ट है, और कहीं पे भी मिलेंगे ना तो लोगों की प्रशंसा करते हैं, और किसको भी मिलेंगे तो कहेंगे कि वो डॉक्टर शाह है ना, बहुत अच्छे हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है, ऐसा, क्योंकि एक दूसरे की वो प्रशंसा करते हैं तो सभी डॉक्टरों के बीच में उनका सम्मान है, सभी उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, क्योंकि वह बात वह रिलेटेड डॉक्टर तक जरूर पहुंच जाती है। तो यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि जिससे आप संबंधों को अच्छा बना सकते हैं। और एक चीज है कि इससे विपरीत कि कभी अभी टीका नहीं करो, जब तक पॉसिबल हो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करो, क्योंकि क्रिटिसिज्म किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। जब भी ऐसी बातें करते तो लोग कहते भी जरूरी है टीका करना, तो जब हम सपोज भी घर में है बच्चों को कुछ थोड़ा भी हम नहीं बताएंगे तो कैसे वो चेंज होंगे, ऑफिस में जो सबऑर्डिनेट है बार बार मिस्टेक करता है तो कैसे हम उनको चेंज करेंगे। जहां तक पॉसिबल हो टीका नहीं करो, उसे और कोई जैसे अप्रिशिएशन दे करके और तरीके से परिवर्तन लाओ। फिर भी अगर आप समझते हैं कि बहुत जरूरी है कि टीका तो करनी ही पड़ेगी, तो कुछ उसके नियम है ना, उन नियमों को ध्यान से सुनो और इसको अपनाना भी उन नियमों को। एक बात तो कि 5 दिन बाद टीका नहीं करो, अगर व्यक्ति ने आज गलती की है आप 5 दिन के बाद कहते कि तुमने 4 दिन पहले बहुत गलती की थी, ये गलत कर दिया था, तो वो ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। उससे अच्छा है कि भी जब वो गलती करता है तब ही भले उसको बताओ, और ये भी कहो कि भी तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, एज ए इंडिविजुअल यू आर वेरी गुड, लेकिन आपने ये जो काम किया वो थोड़ा सा गलत किया। ये बात अगर उनको हो और प्रिसाइज हो, कई बार हम मैग्निफाई भी करते हैं उस चीज को ना, उसने एक गलती के लिए तुम बेकार के आदमी हो, कभी नहीं सुधरोगे ना, भाई कैसे पता चला वो नहीं सुधरेगा ना, भला अभी उसने गलती की, वो पॉइंट आउट करनी चाहिए कि भाई तुमने ये किया या गलत किया, परंतु वो नहीं सुधरेगा वो तो आपने अपना ओपिनियन बांधा। तो इसलिए प्रिसाइज जो व्यक्ति की गलती है वो उसको भले बताओ, और फिर जब आपने सारी बात बताई ना, फिर जब उससे आप अलग होते हैं, वह सारी बात पूरी हो गई, और फिर जब वो व्यक्ति आपसे अलग होता है तब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई यहां आएगा? भाई साहब यहां आइए, पीछे से आइए आइए, देखिए ना, इसमें थोड़ा सीखना भी पड़ता है, पुरुषार्थ करना है, क्योंकि क्रिटिसिज्म की नेगेटिव इफेक्ट है, तो इसके कारण सही रूप से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। कि जैसे कि कोई भी बात भी मैंने बता दी कि भी आपने गलती की है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, उसके बाद ये कहना है ना कि भी इस बात को भी मैं सदा के लिए भूल गया हूं, मुझे याद रहना ही नहीं है, आपके फायदे के लिए मैंने तुमको यह बताया, ऐसे कहो कि भी आप इस बात को भी याद रखने वाले नहीं है, नहीं तो सोचेगा कि भी मेरे बॉस ने क्रिटिसाइज किया ना, जीवन भर अभी ये मुझे याद रखेगा, कभी मुझे चांस से देगा ही नहीं, प्रमोशन के लिए मेरा नाम भी यह नहीं देगा, ऐसे वह सदैव याद रखेगा और वह काम होगा ही नहीं। और फिर अंत में जाते समय भी कोई ना कोई रीते कैसे कि फिजिकल टच इज इम्पोर्टेंट, भले अभी डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट चीज होगी, भी किसी से हाथ मिला सकते कि मैं हमेश के लिए भूल गया हूं, तुम कभी भी इसको याद में नहीं रखना, या तो उसको पीठ भी थपथपाओ कि बिल्कुल चिंता नहीं करना, तुम्हारे में भी चेंज आ जाएगा, मैं भी इस बात को भूल जाऊंगा, ठीक है उमशा भले बैठी। तो ऐसे फिजिकल जो उस समय का वह सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको जरूर यूज करो, और कुछ युक्ति से भी आप रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। हाँ, कुछ युक्ति से व्यक्ति में परिवर्तन भी ला सकते हैं, कई बार परिवर्तन ले, हम सीधी टीका करते हैं उसकी, उसके बदले कुछ युक्ति से आप काम करो तो संबंध भी अच्छे होंगे और साथ साथ में वह काम भी हो जाएगा। एक बार एक नए जनरल मैनेजर एक कंपनी में अपॉइंट हुए, तो भी सवेरे सवेरे आए अपने ऑफिस में बैठे, उनको थोड़ी प्यास लगी, उसने प्यून को बुलाया और कहा कि एक गिलास पानी मिलेगा, तो प्यून ने कहा मेरा काम नहीं है, मैं पानी नहीं देता हूं। हाँ, तो आप होते तो कैसा फील करते हैं? हाँ, डिस्टर्ब फील करते हैं ना, उसको डांट देते, परंतु ये जनरल मैनेजर बड़े समझदार थे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उसको कहा तो भैया तुम्हारा क्या काम होता है? उसने कहा कि भी मेरा काम है फाइल को ढूंढ करके लाके देना। कहा बहुत अच्छा है ना, तुम कब से इस कंपनी में हो? उसने कहा कि मैंने 1981 में ज्वाइन किया, तब से मैं यहां पर हूं। तो कहा अच्छा, इतने सालों से इस कंपनी में हो, अच्छा 1981 की वो जो फाइल है ना वो जरा लाके देना। बेचा का बाप रे, हाँ गया ढूंढने लगा, 1981 की फाइल कहां से मिले, कैसे भी करके वो फाइल लाके दी। तो कहा वंडरफुल, तुमने बहुत अच्छा काम किया, देखो इंपॉर्टेंट फाइल है तुमने मुझे लाके दी। ये दूसरे दिन आए, दूसरे दिन सवेरे सवेरे उसको बुलाया, कहा कि भैया वो 1985 की फाइल है ना वो मुझे जरा लाके देना ना, बहुत काम है। तो फिर से उसने सोचा कि बाप रे देखो ये दूसरा काम, अभी काफी मेहनत की, एक घंटे तक ढूंढता रहा, यहां वहां से ढूंढ के 85 की फाइल लाके दी। हाँ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। फिर चौथे दिन वो आए तो उसको बुलाया और कहा कि देखो तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तीन दिन से तुमने कितनी मेहनत करके ये तीन इंपॉर्टेंट फाइल मुझे लाके दी है, मैंने तुम्हारा नाम है वो मैनेजमेंट को प्रमोशन के लिए भेज दिया है। हाँ, जब चौथे दिन आए ना तो बस पहुंचते ही पानी का ग्लास टेबल पे तैयार था, साहब आपके लिए पानी। तो युक्ति से चलो। हाँ, संबंध भी नहीं डिस्टर्ब हुए, उनको जो काम करना था वह भी हुआ, उस प्यून का भी उत्साह बढ़ गया, वह भी आगे बढ़ा। तो इन सब चीजों में पहले थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ठीक से करो तो बहुत अच्छा हो सकता है। हम जो कम्युनिकेट करते हैं ना उसमें भी कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं, भला आपका भाव अच्छा है परंतु हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इससे भी प्रॉब्लम होता है। हाँ भाई साहब यहां आएंगे, ये लो लो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, कचरा पेटी में डालना है, जाओ कचरा पेटी में डालो। देखो हाँ ऐसा कहेंगे तो क्या होगा, क्योंकि मैंने क्लियरली बोला ही नहीं, उनको हाथ में पकड़ा दिया लेकिन ये नहीं बोला कि कचरा पेटी में डालना है। हाँ अगर पहले से ये बोला होता कि भाई ये कचरा है तुम फेंक के आओ तो क्लियर मैसेज मिलता। ऐसी बहुत सारी बातों में हम मन में ही सोचते, भी मैंने कचरा पकड़ा है तो सोच लिया कि उसको डालना है, हाँ, कहा नहीं, नहीं कहा तो कैसे मालूम पड़ेगा। उसे हर बात में आप सोचिए कि जब हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ, सबॉर्डिनेट के साथ, तब जो हमारा मैसेज है वह क्लियर है या नहीं है। और एक काम करना है कि अपनी गलती को भी स्वीकार करो। कहते हैं कि चेयरमैन की पेंसिल पर भी इरेजर होता है, क्यों हाँ क्यों होता है इरेजर चेयरमैन की पेंसिल पे, बोलो, क्योंकि वो भी गलती कर सकता है, उसको इरेज करनी पड़ेगी, तो है ना पावरफुल इफेक्ट हो सकती है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में जब शुरुआत में प्रैक्टिस शुरू की तब काम किया, तो तब हम लोग एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मेरे जिम्मे था कि भी उसका फोल्डर बनाना है। मेरा भले सजेशन था कि भी हम फोर कलर का अच्छा फोल्डर बनाए तो अच्छा है, लेकिन जो हमारे बॉस थे उन्होंने सोचा कि इसमें इकोनॉमी करनी चाहिए, तो कि भी सिंगल कलर में ही छपा दो कोई बात नहीं है, और जब सिंगल कलर में छपा तो उसका आउटलुक बिल्कुल अच्छा नहीं था, किसी को भी पसंद नहीं आया कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है ये भी कोई फोल्डर होता है। हाँ तो सभी ने उसकी टीका की, तो ये बड़ा सिंपल था कि भी दोष मेरे पे डाल देना कि भी तो इसने छपाया है, हाँ, परंतु वो बॉस बड़ा समझदार था, और उसने दो बार डिस्कशन में यह बात कही कि मेरी गलती है, भी मैंने कहा था सिंगल कलर में छपाओ, है ना, गिरीश का तो यही विचार था कि फोर कलर में छपाओ। तो देखो उन्होंने कहा, एक तो उससे वो छोटे नहीं हो गए और दूसरा जीवन भर मेरे मन में उनके प्रति एक अच्छा रिस्पेक्ट डेवलप हुआ। तो ऐसे अपनी गलती को स्वीकार करना वो एक बहुत बड़ी बात होती है, तो भी ऑटोमेटिक, अभी इसमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, वो उस बॉस के साथ जीवन भर मेरे मन में सम्मान रहेगा। और कुछ लोग चैलेंजर भी होते हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि जो लोग चैलेंजर है ना उनको अवॉइड करते हैं, और जब आप उसको अवॉइड करेंगे तो नेचुरली रिलेशन तो अच्छे होंगे ही नहीं। परंतु चैलेंजर्स भी काम के व्यक्ति होते हैं। दूसरे एक मेरे मित्र का ये उदाहरण है कि उसने एमबीए किया है ना, और मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइंट हुआ और बड़ा एकदम स्ट्रांग लड़का था, हाँ, जिसको कहना एम्बिशियस था कि कहां से कहां पहुंच जाना है, तो बहुत मेहनत करता था, काफी उसको जल्दी जल्दी प्रमोशंस भी मिल गए और बहुत लोग उससे जलते थे। उनके जो प्रेसिडेंट थे तो वह एक चैलेंजर थे, ज्यादा प्रशंसा नहीं करेंगे, उसकी टीका भी करेंगे, कहेंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो। तो हमेशा ये सोचता था कि ये मेरा जो प्रेसिडेंट है ना मेरे से जलता है, इसके कारण कभी भी मेरी प्रशंसा नहीं करता, उल्टा कभी कभी मेरी टीका भी कर देता है। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, उसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हाँ इतनी सीरियस गलती हो गई कि सभी लोग बस उसके अगेंस्ट हो गए ना, सब ढूंढने लगे मौका कि इसको कंपनी से निकाल दो, कि इसके कारण कंपनी की कितनी बदनामी हो गई, इसके कारण कितना लॉस हो गया हमारी कंपनी को, ऐसे सब लोग अगेंस्ट हो गए उसके। लेकिन तब सिर्फ बस वो एक प्रेसिडेंट था जो उसके फेवर में था, यहां तक कि उसने जाके मैनेजिंग डायरेक्टर को भी कहा कि भी इसको हमें निकालना नहीं चाहिए, इसके ही कारण हमारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ, चलो आज उसने गलती की तो कुछ नुकसान हुआ, बट ही इज हाईली टैलेंटेड, ये हमारी कंपनी में रहेगा तो वो उसका जो लॉस है वो तो थोड़े ही समय में रिकवर हो जाएगा, तुम कोई चिंता नहीं करो। तो बस इसी एक प्रेसिडेंट के कारण उसके सामने बहुत बड़ी समस्या बच गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए जब एक बार उसने वर्णन भी किया तो कहा कि बस उसी के कारण, नहीं तो उस समय मेरा कैरियर ही स्पॉइल हो गया था। अगर नेगेटिव रिमार्क से मुझे निकाल दिया जाता तो दूसरी कंपनी वाले भी शायद जल्दी से नहीं रखते, परंतु ये एक ही व्यक्ति था जिसने मुझे सपोर्ट दिया। तो जो चैलेंजर्स भी होते हैं, कई बार बलू हमारी टीका भी करते हैं, परंतु हो सकता है कि वो बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए किसी के भी बारे में ऐसा नहीं सोचो कि यह व्यक्ति नेगेटिव है, जिसको कहते हैं कि ओपिनियन नहीं बांधो। हम क्या करते हैं कि लोगों के बारे में ना ओपिनियन बांध लेते हैं। कभी किसी ने एक नदी में दो बार स्नान किया है, किया एक नदी में दो बार स्नान, किसने किया है? किया है। अच्छा देखो, है ना, एक नदी में आप दो बार स्नान नहीं कर सकते। हाँ भल नाम वही था लेकिन पानी तो बह रहा है, पानी चेंज हो गया है ना। वो नदी में आप 10 मिनट के बाद जाओ तो नदी तो चेंज हो गई। तो ऐसे ही जब भी आप एक व्यक्ति को मिलते हैं, फिर भले 10 मिनट के भी बाद मिलो तो वही व्यक्ति नहीं है ना, उसका सोच विचार सब कुछ परिवर्तन हो गया है। तो बस ये बात को पक्की समझो। तो इसलिए किसी के भी बारे में ओपिनियन को नहीं बांधो, तो ऑटोमेटिक आपका व्यवहार भी लोगों के साथ सही रहेगा। और एक छोटा सा कार्य करना है कि जब लोगों से मिल रहे हैं तब सिर्फ आप यह शरीर को ही नहीं मिल रहे ना, बॉडी जैसे कहे कि भी हम ह्यूमन बीइंग को कंप्यूटर के साथ उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं कि भी कंप्यूटर में भी क्या है, एक तो हार्डवेयर है और दूसरा सॉफ्टवेयर है। तो ये शरीर वह हार्डवेयर है और हमारे में जो चेतना है अंदर, वो चेतना एक सॉफ्टवेयर है। तो देखो, हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है या सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है ना, तो ये पक्का दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन सॉफ्टवेयर कई बार में बहुत अच्छा है कंप्यूटर, लेकिन आपके पास सॉफ्टवेयर ही पुराना है तो कोई काम का नहीं। तो इसलिए हम ये सोचो हमेशा कि मैं वो दिव्य चेतना को मिल रहा हूं, कि मैं भी वह दिव्य चेतना हूं, आत्मा हूं, जिसको मिल रहा हूं वह भी आत्मा है। देखो ये भाव से ही आप मिलो, ये भाव से आप मिलेंगे ना तो भी तुरंत शांति का अनुभव करने लगेंगे। इवन आप भी पीसफुल होंगे, वह आत्मा के भी पीसफुल वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे। कहते हैं देखो, विज्ञान का क्या नियम है कि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। परंतु आध्यात्मिकता का नियम डिफरेंट है। आध्यात्मिकता का नियम है कि सेम पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, कि आप भी उसके बारे में शांति से सोचते हो तो ऑटोमेटिकली वह भी आपके नजदीक आएगा, उसको आपका व्यवहार भी अच्छा लगेगा। और कहते हैं जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो ऑरा को भी एक्सचेंज करते हैं, है ना, हम सिर्फ अपने बातों को विचारों का एक्सचेंज नहीं करते। तो ऐसे आप उस भाव से मिलेंगे कि वह भी शांत स्वरूप आत्मा है, मैं भी शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो हम ऑरा को भी शांति के ऑरा को एक्सचेंज करेंगे। और इसीलिए है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में जो मिलने का शब्द है, जब हम एक दूसरे को मिलते हैं ना कहते हैं जय भगवान, जय श्री कृष्ण, परंतु यहां पर क्या शब्द है? ओम शांति। हाँ, आप सबने भी सुना है। तो क्यों पता है कि भी ओम का अर्थ है मैं स्व, ओम स्व का वाचक है, और जब शांति कहा तो मैं शांत हूं, जिसको मिल रहा हूं वह भी एक डिविनिटी है ना, मैं डिवाइन एनर्जी को मिल रहा हूं और वह भी एक आत्मा है। जब इस भाव से मिलता हूं तो ऑटोमेटिक रिलेशंस भी अच्छे होने लगते हैं।
डॉक्टर साहब, आपने जो ओरा की बात बताई तो ओरा पॉजिटिव हमारा कैसे बनेगा?
अच्छा अच्छा, देखो बहुत गहरा सवाल है ऐसे तो, कि ओरा को हम पॉजिटिव कैसे बनाएं? जितने आप शांत होंगे ऑटोमेटिकली ये ओरा पॉजिटिव बनता जाएगा। जब हम अशांत है, चिड़चिड़े हैं, नेगेटिव है, जो भी नेगेटिविटी है ना, एक तो उस ओरा को रोकती है ना, ये सूक्ष्म शक्ति है, उस सक्षुष्म शक्ति के लिए एक हिंड्रेंस बन जाती है। परंतु जब आप पीसफुल होते हैं तो वो जो रुकावट है वो दूर होती है, रुकावट दूर होने से वो ऑरा एक तो फैलता है, और दूसरा हमें वैल्यूज को भी धारण करना है, है ना। जब वैल्यूज नहीं है तो हमारा ऑरा जो है वो जिसको कहेंगे डार्क है ना, ऑरा डार्क रेड है। परंतु जैसे जैसे आपके जीवन में गुण आते जाते हैं, अच्छाई आती जाती है, तो वह लाइट रेड होने लगता है। फिर हो सकता है कि भाई पिंक कलर का होता है, और अच्छा हो तो और लाइट होगा, अंत में व्हाइट हो जाता है, जो सचमुच टोटली स्पिरिचुअल है। बल लाखों में एक ही कोई होगा जिसमें 100% स्पिरिचुअलिटी है, उसका ऑरा एकदम व्हाइट कलर का होगा। तो इसलिए इस प्रकार के पुरुषार्थ से आप ऑरा को भी पॉजिटिव बना सकते हो, ऑरा को बढ़ा भी सकते हो। और स्वास्थ्य के लिए कहेंगे इसको सर्कुलेट करना, जितना सर्कुलेट होगा आपको बीमारियां कम होगी। ओम शांति।